रजनी जी ने दोनों को साथ देखकर नाक सिकोड़ते हुए नाराजगी से कहा, सारा प्यार बस अपने पापा के लिए है, माँ की तो किसी को याद ही नहीं आती, कोई कदर ही नहीं माँ की। उनकी शिकायत सुनकर रश्मि आलोक जी से अलग हुई और उनके पास आकर उनके गले से लग गई। ओ मेरी प्यारी माँ, मैं आपसे भी बहुत सारा प्यार करती हूँ, आप तो मेरी इकलौती माँ है ना, कोई दो चार माएँ थोड़ी हैं मेरी, तो फिर मुझे आपकी कदर कैसे नहीं होगी। उसकी शरारत शुरू हो चुकी थी। उसकी बात सुनकर बाकी सबकी मुस्कान बड़ी हो गई। वहीं रजनी जी ने उसके सर पर चपत लगाते हुए कहा, अब तो सुधर जाइए, जल्दी ही ब्याह कर ससुराल चली जाएंगी, पर अब भी बच्चों की तरह शैतानियां करती हैं, बोलने से पहले जरा भी नहीं सोचती, थोड़ी तो समझदारी दिखाइए बेटा। उफ़ो माँ, आपने सुना नहीं है, माँ बाप के लिए बच्चे हमेशा बच्चे ही रहते हैं, इसलिए उन्हें शरारतें करते रहना चाहिए ताकि उन्हें एहसास होता रहे कि उनके बच्चे अभी बच्चे ही हैं। रश्मि ने इतनी गंभीरता से कहा कि पहले तो सब आंखें बड़ी बड़ी करके उसको देखते ही रह गए, फिर एक साथ ही ठहाके मारकर हंस पड़े। रजनी जी ने उसको अपने सीने से लगाते हुए कहा, काश कि आप हमेशा छोटी ही रहती तो हमें उन्होंने इतना कहा ही था कि रश्मि ने उनके होठों पर अपनी हथेली रख दी। रजनी जी की आंखें नम थी। रश्मि ने इनकार में सर हिलाते हुए मुस्कुरा कर कहा, अभी मेरी विदाई में बहुत वक्त है, मैं इतनी जल्दी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली हूँ, अभी तो मुझे आपको बहुत परेशान करना है, इतना परेशान कि आप खुद मुझे इस घर से भगा देंगी, वो भी रोकर नहीं मुझसे परेशान होकर, इसीलिए अपने आंसुओं को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है आपको। रश्मि ने उनका मूड ठीक करने की कोशिश की। रजनी जी फीका सा मुस्कुरा दी, पर उनकी आंखों में अब भी नमी थी। आखिर आज उनका इस सच से सामना हो गया था कि अब उनकी लाडली बेटी, जिससे उनके घर की रौनक है, वो यहाँ बस कुछ दिनों की मेहमान है, उसके बाद वो इस आंगन को वीरान कर दूसरे घर चली जाएगी, और ये सच उन्हें तकलीफ दे रहा था जिसे उन्होंने बड़ी आसानी से छुपा लिया। रेहान और आरवी ने बाकायदा उनके पैर छूकर उनसे जाने की इजाज़त मांगी। रजनी जी ने आरवी को गले से लगाते हुए कहा, जैसे आज आई हैं वैसे ही कभी कभी आ जाया कीजिए, ये भी आपका ही घर है, और भूलिएगा नहीं कल आपको यहाँ आना है दामाद जी और हमारी गुड़िया को लेकर। आरवी ने मुस्कुरा कर हामी भर दी और रेहान के साथ वहाँ से निकल गई। रेहान ने उसे उसके घर छोड़ा और खुद निकल पड़ा ऑफिस के रास्ते। आखिर अपनी इस खुशी को शान से बांटे बिना उसके दिल को सुकून कहाँ मिलता। रास्ते में उसने अपने मॉम डैड को फ़ोन करके उन्हें सब बताया, और वो भी ये जानकर खुश हो गए कि आखिरकार उनके बेटे ने अपने लिए लड़की पसंद कर ही ली, वरना जैसे वो लड़कियों से मिलने से बचता था उन्हें तो लगने लगा था कि उन्हें कभी अपनी बहू का चेहरा देखना नसीब ही नहीं होगा, पर भगवान ने उनकी इच्छा को देर से ही सही पर पूरा कर दिया था। रेहान की एक और प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी। कल सुबह ही अभिजीत जी और वृंदा जी आने वाले थे। कुछ देर पहले तक कितना परेशान था वो, पर अब उसके लबों पर बड़ी सी मुस्कान फैली हुई थी। दूसरी तरफ आलोक जी ने लड़कों वालों को इनकार कर दिया, और जैसे ही पलटे सामने रजनी जी खड़ी थी। रजनी जी ने नम आंखों से उन्हें देखते हुए कहा, बेटियां इतनी जल्दी बड़ी क्यों हो जाती हैं। उनका सवाल आलोक जी के आंखों में भी नमी ले आया। उन्होंने फीकी मुस्कान के साथ कहा, बेटियां जल्दी बड़ी नहीं होती हैं, वो तो हम उन्हें इतना प्यार करते हैं कि हमें ही एहसास नहीं होता कि कब हमारी लाडलो इतनी बड़ी हो जाती है कि कल तक जो बेटी हमारी उंगली पकड़कर चलती थी वो हमारा हाथ छोड़कर किसी और का हथेली थामकर उनकी जिंदगी में शामिल हो जाती है। रजनी जी की आंखें छलक आईं तो आलोक जी ने उन्हें गले से लगाते हुए कहा, संभालिए खुद को, अभी तो बस रिश्ते की बात ही चली है, अभी तो हमारी लाडलो यही है हमारे पास। उन्होंने रजनी जी को संभाला, फिर उन्हें लेकर कमरे में चले गए। रश्मि भी बहुत खुश थी, और आज डिनर बनाने का काम उसने अपने जिम्मे ले लिया था। आरवी जब घर पहुंची तो अंशु जाग चुकी थी, और जैसा कि उसको आशंका थी अंशु ने उठकर सारे घर में उसको ढूंढ लिया था, और अब वो उसके लिए बुरी तरह रो रही थी। अनुपमा जी उसको चुप करवाने की कोशिश कर रही थी, पर उसको तो अपनी मम्मा चाहिए थी। आरवी ने जैसे ही घर की चौखट पर कदम रखा उसके कानों में अंशु की सिसकियों की आवाज़ पड़ी, और इसके साथ ही उसका मन व्याकुल हो उठा। वो तुरंत भागते हुए अंदर आई और आवाज़ की दिशा में दौड़ती चली गई। हॉल में स्टूडेंट्स बैठे थे, पर आवाज़ ऊपर उसके कमरे से आ रही थी। वो भागते हुए ऊपर पहुंची और जैसे ही कमरे में कदम रखा सामने रोती बिलखती अंशु को देखते ही उसकी आँखें छलछला गईं। वो जानती थी कि जागने के बाद वो सिर्फ उसे ही ढूंढती है, उसको तब बस अपनी मम्मा चाहिए होती है, और जब आरवी उसको नहीं मिलती तो उसको लगता है जैसे वो उसे छोड़कर चली गई है, इसलिए वो रोने लगती है, और तब वो किसी से भी चुप नहीं होती। फिर भी वो उसको सोता छोड़कर इतनी देर के लिए चली गई, और उसके अपने पास ना पाकर अंशु ने रो रोकर अपनी हालत खराब कर ली है। अनुपमा जी उसको बातों और खिलौनों से बहलाने की कोशिश कर रही थी, पर अंशु सब कुछ दूर फेंक रही थी और रोते हुए मम्मा पुकार रही थी। उसका दूध सा गोरा चेहरा रोने के वजह से लाल हो चुका था, पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, ज्यादा रोने के वजह से नाक से भी पानी आने लगा था। आरवी की आंखें छलक आईं उसकी दशा देखकर। खुद पर गुस्सा आने लगा कि क्यों उसने इतनी लापरवाही दिखाई। वो दौड़ते हुए उसके पास पहुंची। अंशु आंखें बंद किए उन्हें अपनी छोटी छोटी मुट्ठियों से रगड़ते हुए रोए जा रही थी, इसलिए उसने आरवी को देखा ही नहीं। आरवी उसके पास आ गई और तड़पते हुए उसके जबान से अंशु का नाम निकला। उसकी आवाज जब अंशु के कानों में पड़ी तो उसने अपनी छोटी छोटी आंखों को खोलकर उसे देखा। आरवी ने उसको अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखें बरस पड़ी। जाने कितनी बार उसने उसके चेहरे को चूमा था, कितनी दफा उसको अपने सीने में भींचा था। खुद को पुरसुकून करने की कोशिश कर रही थी और साथ में अंशु को चुप भी करवा रही थी। कुछ देर बाद अंशु कुछ शांत हुई तो आरवी ने उसको खुद से अलग किया। अंशु ने नम आंखों से उसे देखा और सिसकते हुए बोली, मम्मा आप बेबी को छोड़कर कहाँ चली? बेबी को लगा आप फिर से उसको छोड़कर चली गई। मम्मा बेबी को आपके साथ रहना है, बेबी को मम्मा के साथ रहना है। आप बेबी को फिर से छोड़कर नहीं जाएंगी ना? बेबी को आपके बिना अच्छा नहीं लगता। जब आप नहीं थी बेबी आपको बहुत मिस करती थी। डैडी से कहती थी बेबी को मम्मा चाहिए, फिर डैडी बेबी से एंग्री हो जाते थे। बेबी अब आपके बिना नहीं रहेगी। आप बेबी को छोड़कर नहीं जाएंगी ना? टू बी कंटिन्यूड।